भाग तीन, खंड सात। वेबुसादो ने कैसे श्रीलंका एवं भारत की यात्रा की। आदरणीय वेबुसादो की ख्याति म्यांमार तक ही सीमित नहीं थी, वह अन्य देशों में भी फैल गई थी। यही कारण है कि 1957 में नडा की पूर्णिमा पर उन्होंने श्वेबो के ऑंगमई साधना केंद्र से श्रीलंका की यात्रा की। वे एक चाय व्यापारी तथा उसकी पुत्री द्वारा आमंत्रित किए गए थे और उनके साथ एक इतालवी भिक्षु आदरणीय लोकनाथ ऊ सुमन एवं रेल मंत्री यू थी नियंत थे। चाय व्यापारी श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बड़े भाई थे। आदरणीय वेबुसादो की श्रीलंका की यात्रा के पहले ऊ लोकनाथ ने बर्मा से वापस आते समय वहां कुछ समय बिताया था। चूंकि श्रीलंका एक बौद्ध देश है, तत्कालीन प्रधानमंत्री की भतीजी अरोमा ने यह समाचार पढ़ा था कि वेबुसादो ने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है। जब प्रधानमंत्री ने ऊ लोकनाथ को भोजन के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया, तो प्रधानमंत्री की भतीजी ने ऊ लोकनाथ से पूछा कि क्या यह सत्य था। ऊ लोकनाथ ने उसे समझाया कि वेबुसादो एक अत्यंत विशिष्ट एवं उदात्त व्यक्ति थे और वे ऐसी शांति प्रसारित करते थे जो उन्हें प्रणाम करने वाले भक्तों को भी शांतिमय बना देती थी। अरुमा ने लोकनाथ से यह इच्छा व्यक्त की कि बर्मा में वापस लौटने के पश्चात वे सयादों से उसके लिए एक दिन आकर उनको नमन करने की अनुमति लें। वो लोकनाथ विधिवत चौक से गए और सयादों से एक दिन निर्धारित करने के लिए पूछा। चूंकि वह सयादों का श्वेबो जाने का समय था, तो उन्होंने उन्हें वहां के लिए समयादेश अर्थात मिलने का निश्चित समय निर्धारित किया तथा उन्होंने ऊ तीन ओन से श्रीलंका से आने वाली अतिथि के लिए एक आवास निर्माण करने के लिए कहा। यद्यपि इसके पहले कि वहां से अतिथि वर्मा आए, सयादो ने श्रीलंका की यात्रा की। बाद में सयादो के निधन के पश्चात यह अरोमा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 25 अगस्त 1977 को इंजिंगबिंग आई थी। तो सयादो तथा उनके सहयात्री नाव से श्रीलंका गए और 4 दिन एवं 3 रात तक यात्रा की। चूंकि सयादो नौकायन के अभ्यस्त नहीं थे, जब जब ऊंची लहरें उठतीं तो वे समुद्री रोग अर्थात मिचली का अनुभव करते, तथापि उन्होंने बिल्कुल शिकायत नहीं की। जब ऊ सुमन ने अपने समुद्री रोग यानी सी सिकनेस के विषय में सूचित किया, तो वेबुसादो ने केवल इतना कहा, ऐसे में आपको केवल ध्यान लगाने की आवश्यकता है। यदि आप समुद्री रोग का अनुभव करते हैं तो तनाव मुक्त रूप से ध्यान लगाइए, वह लुप्त हो जाएगा। यही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जब वेबुसादो श्रीलंका पहुंचे, तो बर्मा के राजदूत, भिक्षुगण तथा प्रधानमंत्री के भाई द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, और उसके बाद उन्हें उनके आवास, जिसका नाम मनोहरी दिया गया था, पर ले जाया गया। सयादो श्रीलंका में 22 दिनों तक रहे और प्रतिदिन उन्होंने धम्मोपदेश दिया। प्रातःकालीन भोजन ग्रहण करने के पश्चात वे सदैव एक प्रवचन देते थे। तब सयादो 9 बजे से 11 बजे तक विश्राम करते थे। 11 बजे बिभुष यादव मध्यान्ह का भोजन करते थे और तब 4 बजे तक लोगों को उपदेश तथा पंचशील के शिक्षा पद देते थे। संध्या काल में वे शिष्यों के साथ धम्म पर चर्चा करते थे। उथी नियंत सयादवा के लिए अनुवाद करते थे। जब वे श्रीलंका में थे तो सयादवा बुद्ध के दंत अवशेष को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए। जब सयादवा विमान द्वारा श्रीलंका से मद्रास यानी चेन्नई गए तो ऊ लोकनाथ श्रीलंका में ही रुक गए। भारत में सयादवा तथा उनके साथ के लोग बौद्ध स्थलों की तीर्थ यात्रा पर गए। बोधगया में सातों महत्वपूर्ण स्थान राजगीर, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर और लुम्बिनी, वहाँ भी जहाँ देवदत्त पृथ्वी में धस गया था, अवशेष कक्ष, जेतवन विहार के अंदर के 11 महत्वपूर्ण स्थान और विहार के बाहर के 6 स्थान, पूर्वाराम विहार, रानी मल्लिका का महल, कुशीनगर में बुद्ध के अग्नि धातु में प्रवेश करने के स्थान, ककुट्ठा नदी एवं गांव जहां आनंद ने बुद्ध को उनके परिनिर्वाण के ठीक पहले स्वच्छ जल अर्पित किया था, लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थान पर अशोक स्तंभ तथा ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी वे गए। वे ताजमहल भी गए। चूंकि रेल मंत्री होने के नाते उथी नियंत को नई दिल्ली में एक गोष्ठी में जाना पड़ा। जब वे कोलकाता पहुंचे तो बिभुष यादव उनके साथ गए। इस यात्रा में वे सांची, वह स्थान जहां सारिपुत तथा महामोगल्लान के अवशेष प्रतिष्ठापित हैं, भी गए। नई दिल्ली से उनका दल कोलकाता लौटा तथा वहां से यंगोन। वापस आते समय श्रावस्ती तथा राजगीर के बीच में ऊ सुमन ने सयादों से कहा कि यह असंभव सा प्रतीत होता है कि बुद्ध के समय श्रावस्ती में 7 करोड़ लोग रहते थे। श्रावस्ती तथा राजगीर एक दूसरे से केवल 300 मील दूर थे, जबकि दक्षिण से उत्तर तक म्यांमार लगभग 2000 मील तक फैला है और जनसंख्या केवल 2 करोड़ है। सयादो ने उनसे पूछा, राजगीर में सबसे धनी व्यक्ति कौन था? वह ज्योतिक था बंते। ज्योतिक की पत्नी कौन थी? वह उत्तर द्वीप से सतुलकाई थी बंते। क्या उत्तर द्वीप से सामान्यतः महिलाएं दक्षिण में रहने के लिए आती हैं? तो वह क्यों आई? वह ज्योतिक के महान पुण्य के कारण आई बनते। ज्योतिक का महल कैसा था? वह एक ऐसा महल था जो धरती से उत्पन्न हुआ था बनते। क्या महलों का धरती से निकलना साधारण बात है? नहीं बनते। तो ऐसा क्यों हुआ? ज्योतिक के महान पुण्य के कारण बनते। हाँ, आप कहते हैं कि 300 मील में फैले श्रावस्ती राज्य में 7 करोड़ लोगों का रहना असंभव है। 7 करोड़ लोग ही नहीं, अपितु यहाँ तक कि 100 करोड़ लोग भी वहाँ रह सकते हैं। और क्यों? उस समय बुद्ध वहाँ थे। पुण्यवान के लिए, कर्मवान के लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। ऐसा पुण्यवान, ऐसा कर्मवान व्यक्ति जो कुछ भी और जब भी चाहे वह होगा।